आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये क्लास 10th के साइंस का थर्ड चैप्टर है और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम रिवाइज कर लेंगे कि हमने इस चैप्टर में लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। हम समझ रहे थे कि जो मेटल्स हम लोगों के पास होते हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर अगर समझें तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, मतलब उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो मध्यम रेंज की होती है, मिडल रेंज की होती है, ना वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ना वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, नॉर्मल रिएक्टिव होते हैं। और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। और इसीलिए जब हम लोग प्रकृति में देखते हैं तो कुछ मेटल्स हम लोगों को हमेशा कुछ कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं, किसी न किसी के साथ रिएक्ट करने के बाद एक कंपाउंड बनाने के बाद ही हमें मिलते हैं। लेकिन समटाइम्स हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो लीस्ट रिएक्टिव हैं और इसीलिए वो हमें फ्री स्टेट में भी मिल जाते हैं। इसका मतलब क्या है? फ्री स्टेट का मतलब कि वो बगैर किसी से रिएक्ट किए प्योर मेटल हमें मिलता है, हम उन्हें फ्री स्टेट कहते हैं। और ऐसा हम लोग को ज़्यादातर जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं उन्हीं के केस में दिखता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, इन लोगों के जो मेटल्स होते हैं इन सर्टनली समटाइम्स हम लोग को इनके जो मेटल्स होते हैं वो फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। कॉपर और सिल्वर के कभी कभी हम लोगों को मेटल्स जो होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में भी मिल जाते हैं। कॉपर का सल्फाइड या फिर कॉपर का ऑक्साइड मिल जाता है, सिल्वर का भी सल्फाइड या ऑक्साइड हम लोगों को प्रकृति में मिल जाता है। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर वाले जो मेटल्स होते हैं सच एज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इनमें क्या होता है कि दे आर हाईली रिएक्टिव, इसीलिए दे आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट। ये कभी भी हम लोगों को फ्री स्टेट में नहीं मिलते, कभी भी इनका प्योर फॉर्म आप लोगों को नहीं मिलेगा, हमेशा किसी न किसी के साथ रिएक्ट करने के बाद कंपाउंड बना करके ही ये हमें मिलते हैं। अब बात करें उन मेटल्स की जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, नॉर्मल रिएक्टिव होती है इनकी, मध्यम वाले रिएक्टिव जो होते हैं जैसे कि जिंक, आयरन, लेड, ये वाले जो मेटल्स होते हैं क्योंकि ना ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ना हाईली रिएक्टिव हैं, ना लीस्ट रिएक्टिव हैं, नॉर्मल रिएक्टिव हैं, तो इसीलिए इनके जो हम लोगों को कंपाउंड्स मिलते हैं वो ऐसे मिलते हैं, इन मेटल्स के या तो ऑक्साइड मिल जाएंगे या सल्फाइड मिल जाएंगे या कार्बोनेट्स मिल जाएंगे। अब मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि आप लोग ये देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारे मेटल्स के हमें ऑक्साइड मिल रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारी धरती पर देयर इज़ इनफ ऑक्सीजन, बहुत सारा ऑक्सीजन है जो कि मेटल्स के साथ रिएक्ट कर लेता है, प्लस ऑक्सीजन इज़ वेरी रिएक्टिव, तो हमेशा क्या होता है कि इन मेटल्स के साथ ये रिएक्ट करके इसका कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है, मेटल के ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है और हमें मेटल का ऑक्साइड अबंडेंटली धरती पर मिल जाता है। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने मेटल्स की रिएक्टिविटी के आधार पर तीन ग्रुप में उनको डिवाइड किया था, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। अब क्योंकि इन मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग है तो इनके साथ जो इनकी इम्प्योरिटी जुड़ी होती है उसको अलग करने के लिए हम लोगों को अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं, ये ध्यान में रख के कि उस मेटल की रिएक्टिविटी किस तरीके की है, क्या वो लीस्ट रिएक्टिव है, क्या वो मीडियम रिएक्टिव है या वो हाईली रिएक्टिव है। इन बातों का ध्यान में रख करके हम लोग ये कुछ अलग अलग प्रोसेसेस करते हैं जिसके थ्रू हम प्योर मेटल का एक्सट्रैक्शन कर पाते हैं, प्योर मेटल की प्राप्ति कर पाते हैं, जिसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ना शुरू किया था। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को ये जो चार्ट है पेज नंबर 50 पर 3.10 फिगर में, इसमें ये चार्ट मैंने आपको याद करने के लिए कहा था। इसमें सबसे ऊपर लिखा है ओर, उसके नीचे एरो बना करके लिखा गया है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मीनिंग पता क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि ओर की क्वालिटी बढ़ाई गई है। इसका मतलब है कि ओर के अंदर जो मेटल है उसमें से थोड़ी इम्प्योरिटी हटा करके कंपाउंड में से, ओर में से, और मेटल की क्वालिटी बढ़ाई गई है, इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे प्रोसेसेस करते जाएंगे जिससे हमारा मेटल जो है उसे प्राप्त करने का प्योर फॉर्म में हमारा चांस बढ़ता जाए, परसेंटेज ऑफ मेटल बढ़ाएंगे हम एक ओर के अंदर, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर भी एक प्रोसेस है। कई सारे प्रोसेसेस अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग प्रोसेसेस हैं और ये प्रोसेसेस हम करते हैं ताकि ओर के अंदर एक कंपाउंड के अंदर, एक मेटल के कंपाउंड के अंदर मेटल का परसेंटेज हम बढ़ाएं, इसी को कंसंट्रेशन ऑफ ओर भी कहते हैं। उसके बाद ये जो ओर हमारे पास है इसको तीन ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। इसमें जो मेटल्स हैं उसकी रिएक्टिविटी किस तरीके की है इस आधार पे, अगर मेटल हाईली रिएक्टिव है तो हम मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी में उसे डालेंगे, अगर मेटल मीडियम रिएक्टिविटी का है तो मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी वाले ग्रुप में डालेंगे, अगर लीस्ट रिएक्टिव मेटल है तो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी वाले ग्रुप में इसे डालेंगे। जो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी होते हैं उनको हम कैसे प्राप्त करते हैं, उनका जो मोल्टन ओर होता है उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं और प्योर मेटल हमें मिल जाता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। फिर नेक्स्ट ग्रुप मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स होते हैं इनके जनरली हमें कार्बोनेट मिलते हैं या सल्फाइड ओर मिलते हैं। अगर कार्बोनेट मिला है तो हम उसका कैल्सिनेशन कराते हैं, कैल्सिनेशन एक प्रोसेस है जिसके बारे में इस क्लास में हम पढ़ेंगे, या फिर अगर हमें सल्फाइड मिला है उस मेटल का तो हम उसकी रोस्टिंग कराते हैं, रोस्टिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग कराने के बाद हम लोगों को मेटल का ऑक्साइड मिल जाता है। मेटल का ऑक्साइड मिलने के बाद हम क्या करते हैं, मेटल में से उस ऑक्सीजन को रिमूव कराते हैं, मेटल का रिडक्शन करा देते हैं। रिडक्शन कराने के बाद हमें प्योर मेटल मिल जाता है। ये तो बात हो गई मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स की। अब लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स अगर होंगे तो हमें सल्फाइड मिलेगा या तो उसका, और अगर सल्फाइड मिला है तो हम उसकी रोस्टिंग कराते हैं यानी कि मेटल का ऑक्साइड बनवाते हैं। मेटल का ऑक्साइड बन जाता है तो उसमें से ऑक्सीजन रिमूव करा करके रिडक्शन कराते हैं मेटल का और हमें प्योर मेटल मिल जाता है। कभी कभी जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल होते हैं उनका ऑक्साइड भी हमें मिलता है तो डायरेक्टली उसे हीट करते हैं और प्योर मेटल हम लोगों को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो चार्ट बनाया गया है इसे याद रखना है और अपनी नोटबुक में भी इसे बना लेना है। उसके बाद हमने एनरिचमेंट ऑफ ओर्स पढ़ा था। अब एनरिचमेंट ऑफ ओर्स कहें चाहे कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहें एक ही बात है, और दोनों का मीनिंग ये है कि ऐसे प्रोसेसेस या ऐसे काम किए जा रहे हैं जिसमें ओर की क्वालिटी इम्प्रूव की जा रही है। और इस टॉपिक के अंदर हमने ये समझा था कि गैंग्यू क्या होता है। गैंग्यू होता है एक ओर जो होता है उसके अंदर मेटल के साथ जुड़ी हुई जो इम्प्योरिटीज हैं, दे कैन बी इन एनी फॉर्म, किसी भी रूप में हो सकते हैं, सैंड हो सकता है, मिट्टी हो सकता है, किसी और रूप में हो सकता है, और ये सभी के सभी मेटल्स नहीं है, मेटल से डिफरेंट है, इसीलिए हम इन्हें इम्प्योरिटी कहते हैं। तो ये सभी की सभी इम्प्योरिटी गैंग्यू कहलाती हैं। पेज नंबर 50 पर इसका डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं जो एनरिचमेंट ऑफ ओर है इसकी जो स्टार्टिंग पैराग्राफ है इसमें जो स्टार्टिंग की दो लाइन्स हैं वो आप लिख सकते हैं। ओर्स माइंड फ्रॉम अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट्स ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड एटसेट्रा, दीज आर कॉल्ड गैंग्यू एंड दीज इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव फ्रॉम दी ओर। हमें जो मेटल चाहिए उसके लिए हमें इस ओर में से इम्प्योरिटी को निकालना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे तरीके अपनाते हैं जिससे मेटल में से उस इम्प्योरिटी को अलग किया जाए, ये ध्यान में रख के कि उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की और गैंग्यू की वो किस तरीके से भिन्न है, कैसे वो मेटल को और गैंग्यू को अलग करती है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है उनका ध्यान हम करते हैं और हम इनको अलग करने की पूरी कोशिश करते हैं, मेटल को गैंग्यू से अलग करते हैं और प्योर मेटल की प्राप्ति करते हैं। तो हमने अपनी बात आगे बढ़ाई थी और समझा था एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, ऐसे मेटल्स जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं उनकी एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, उनको कैसे प्राप्त करते हैं। तो हम लोगों को लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की जनरली या तो सल्फाइड मिलते हैं या ऑक्साइड मिलते हैं नेचर में। तो यहाँ पर हमने मर्क्यूरिक सल्फाइड का एग्जाम्पल लिया था। मर्क्यूरिक सल्फाइड का दूसरा नाम है सिनाबार, कॉमन नेम है, इसे आप याद भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मर्क्यूरिक सल्फाइड अगर हम लें तो हमें क्या करना होगा, प्योर मर्क्यूरी प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले मर्क्यूरिक सल्फाइड को इनफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बहुत सारे ऑक्सीजन की मौजूदगी में हीट करेंगे तो हमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होगी वो रिलीज हो जाएगी, वो एस्केप कर जाएगी, वायु में मिक्स हो जाएगी। जो हम लोगों को मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिला है सॉलिड फॉर्म में उसको अब हीट करेंगे तो हमें पता है ऑक्सीजन जो उसमें जुड़ा हुआ है वो एक गैस होता है, अगर वो एस्केप कर जाए तो हमें प्योर मर्करी मिल जाएगी। तो इसीलिए हमने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट किया और मर्क्यूरिक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जो कि ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होके वायु में मिक्स हो गई और हमें प्योर मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में मिल गई। ये सभी रिएक्शंस जो हैं पेज नंबर 51 पर दिए गए हैं, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा ये पेज नंबर 51 पर। उसके बाद हमने कॉपर के बारे में भी सीखा कि अगर कॉपर का सल्फाइड मिलता है हमें तो हम क्या करें, कॉपर के सल्फाइड को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगेन हीट करेंगे, कॉपर का ऑक्साइड बनाएंगे और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होगी वो एस्केप कर जाएगी वायु में। कॉपर के ऑक्साइड को डायरेक्टली भी हीट कर सकते हैं और उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करा के कॉपर सॉलिड फॉर्म में हमें मिल जाएगा। या फिर इसमें दूसरा रिएक्शन दिखाया गया है कि कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड को इकट्ठे हीट किया गया है, कॉपर सॉलिड हमें मिल गया है और SO2 गैस एस्केप कर गई है। तो ये तरीके हमने अपनाए हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में से उनकी इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए, क्योंकि इनके पास इम्प्योरिटी जो है वो ही ऐसी होती हैं जो गैस में कन्वर्ट होके एस्केप कर सकती हैं। तो इसीलिए हमने इन मेटल्स को हीट किया है, अलग अलग तरीके अपनाए हैं और इन मेटल के जो ओर हैं उसमें से इम्प्योरिटी को रिमूव किया है। तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो मध्यम वाले एक्टिविटी सीरीज के हमारे एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वो मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी मिडल रेंज में होती है उनको कैसे प्राप्त करें उनके ओर्स में से, ये हम लोगों को पढ़ना है। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा था कौन कौन से मेटल्स हैं मिडल रेंज की रिएक्टिविटी में, आयरन है, जिंक है, लेड है, कॉपर है, ये सारे मिडल रेंज के रिएक्टिव कहलाते हैं। और ये हम लोगों को किस रूप में मिलते हैं, या तो इनका ऑक्साइड मिलता है या सल्फाइड मिलता है या कार्बोनेट मिलता है प्रकृति में। अब हमें क्या करना है, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है उनमें आपने एक बात तो सीखी है कि अगर हमें किसी मेटल का ऑक्साइड मिले तो उससे मेटल प्राप्त करना बड़ा ईजी है, उसे हीट करो, ऑक्सीजन को रिमूव करो और मेटल आप लोगों को मिल जाएगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि कार्बोनेट और सल्फाइड अगर किसी मेटल का है तो उससे हम कन्वर्ट कराते हैं मेटल के ऑक्साइड में, और फिर मेटल के ऑक्साइड को हीट करते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव कराते हैं और मेटल हम लोगों को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो मेटल के कार्बोनेट है या फिर मेटल के सल्फाइड है इनसे हमें बेसिकली क्या करना होता है, बेसिकली हमारा मोटिव होता है कन्वर्ट करने का मेटल के कार्बोनेट या फिर मेटल के सल्फाइड को इनटू मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड को हीट करने से मेटल हमें डायरेक्टली मिल सकता है। तो यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे, जो मिडल रिएक्टिविटी के हमारे पास मेटल्स हैं अगर उनका कार्बोनेट हमें मिला है तो हम उससे उसका ऑक्साइड बनवाना चाहते हैं। ऐसा हम क्या करें जिससे उसको उसका ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जा सके, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो मेटल है उसका जो कार्बोनेट हमारे पास है उनको हम स्ट्रांगली हीट करते हैं। सबसे पहले मैं कार्बोनेट्स के बारे में बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो मेटल्स के कार्बोनेट्स होते हैं उनको हम स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, बड़ा ही लिमिटेड ऑक्सीजन, बड़ा ही कम सा ऑक्सीजन लगा करके हम वहाँ पर मेटल के कार्बोनेट को हीट करते हैं, गर्म करते हैं और मेटल के ऑक्साइड की प्राप्ति करते हैं। इस प्रोसेस का एक नाम है, इस प्रोसेस का नाम है कैल्सिनेशन। यहाँ पर एक और तरीका है, मैं याद करने का तरीका आपको बताती हूँ। यहाँ पर कार्बन जुड़ा हुआ है ना, कैल्सिनेशन और कार्बोनेट दोनों में सी है, तो इससे भी आप याद कर सकते हैं कि कैल्सिनेशन वाला जो प्रोसेस है उसमें मेटल के कार्बोनेट वाली बात होती है और इसमें ऑक्सीजन बहुत कम लेना होता है हमें। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम मेटल के कार्बोनेट को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हीट करें और हमें मेटल का ऑक्साइड मिले, इस प्रोसेस का नाम है कैल्सिनेशन। डेफिनेशन आप लोगों को दी गई है पेज नंबर 51 पर, जो एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज है इसके पैराग्राफ में, स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ में सेवेंथ लाइन जो है, सेवेंथ लाइन इसमें आप लोग देखो, द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इंटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन प्रोसेस की डेफिनेशन दी गई है, इसको आप लोग लिख लेंगे, याद कर लेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी के साथ में आप लोगों को रोस्टिंग की भी डेफिनेशन दी गई है और मीनिंग भी समझाया गया है। जब हमारे पास किसी मेटल का सल्फाइड ओर हो और उससे हमें उसका ऑक्साइड बनवाना हो तो हम क्या करें, हम मेटल के सल्फाइड को मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए एक्सेस ऑफ एयर में, यानी कि बहुत सारे ऑक्सीजन में मेटल के सल्फाइड का रिएक्शन करवाएंगे, उसे हीट करेंगे तो हमें मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको रोस्टिंग का प्रोसेस जो है वो समझाया गया है, द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। आप लोगों को रोस्टिंग में और कैल्सिनेशन में आप गड़बड़ कर सकते हैं, आप लोग क्या करोगे, आप कन्फ्यूज कर दोगे। तो इसीलिए मैंने आपको याद करने का पहला तरीका तो ये बताया कि कार्बोनेट का जो सी है और कैल्शियम का सी है, दोनों में सी आ रहा है, तो आपने कैसे याद रखना है कि मेटल का जो कार्बोनेट है उसमें होता है कैल्सिनेशन और सल्फाइड वाले में रोस्टिंग होता है। और अगर हमें रोस्टिंग करवानी है तो उसमें हमें ज़्यादा ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, और अगर कैल्सिनेशन कराना है तो उसमें लिमिटेड ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा, क्योंकि आपको यही पूछेंगे और आप इसी में कन्फ्यूज़ करके गलत आंसर लिख करके आपके मार्क्स कटवा लोगे। तो इसीलिए बहुत ध्यान से समझ करके, बहुत अच्छे से याद करके, अच्छे से एग्जाम में लिखना है। दोनों प्रोसेस का डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, और आप लोगों को दोनों प्रोसेसेस के केमिकल रिएक्शंस भी दिखाए गए हैं। रोस्टिंग के प्रोसेस में सल्फाइड को बहुत सारे ऑक्सीजन में रिएक्ट कराते हैं, हीट कराते हैं, तो हमें मेटल का ऑक्साइड मिलता है। जिंक के केस में दिखाया गया है कि अगर आपके पास जिंक सल्फाइड हो सॉलिड, तो आप क्या करेंगे, 2ZnS सॉलिड प्लस 3O2, बहुत सारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पर हम हीट करा रहे हैं जिंक सल्फाइड को, और हमें मिल रहा है 2ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो एस्केप कर जाएगी और वायु में मिक्स हो जाएगी। इस प्रोसेस को रोस्टिंग कहते हैं। कैल्सिनेशन में क्या होता है, कैल्सिनेशन में मेटल का कार्बोनेट लिया जाता है और मेटल के कार्बोनेट को भी हीट किया जाता है। सॉलिड फॉर्म में आप मेटल के कार्बोनेट को लेंगे, हीट करेंगे, लेकिन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, बहुत सारी ऑक्सीजन नहीं, थोड़ी सी ऑक्सीजन चाहिए, और हीट करेंगे। हीट करेंगे तो आपको मिलेगा जिंक का ऑक्साइड। अगर आपने जिंक का कार्बोनेट लिया है तो जिंक का ऑक्साइड मिलेगा, कोई और मेटल लेंगे तो उसका ऑक्साइड मिलेगा। तो यहाँ पर जिंक का कार्बोनेट लिया है इसलिए जिंक ऑक्साइड मिला है, और CO2 गैस इस बार रिलीज हो गई है, एस्केप कर गई है, वायु में मिक्स हो गई है। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों के प्रोसेस आपको पता होने चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए। अब हम लोगों ने मेटल सल्फाइड में से और मेटल कार्बोनेट में से मेटल का ऑक्साइड प्राप्त कर लिया। अब मेटल के ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। मेटल के ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को किसी तरीके से हटाएंगे, और किसी भी कंपाउंड में से ऑक्सीजन को हटाने से हम उसका रिडक्शन करा रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं उस मेटल को। तो हम बेसिकली जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव करा के जिंक को रिड्यूस कराना चाहते हैं, तो हमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे केमिकल चीज़ें होती हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने जो पेज नंबर 51 पर जिंक ऑक्साइड का जिंक बनवाया है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन, क्योंकि कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव करवाया, यानी कि जिंक को रिड्यूस करवाया। तो ऐसी केमिकल चीज़ें जो किसी कंपाउंड को रिड्यूस करवाएं, उन्हें रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। सो यहाँ पर आप रिएक्शन देखो, व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विथ कार्बन, कार्बन सॉलिड फॉर्म में, तो हम लोग को क्या मिलता है, हमें जिंक सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है और कार्बन का ऑक्साइड मिल जाता है गैशियस फॉर्म में। तो यहाँ पर कार्बन ने एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया है, क्योंकि उसने जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करवा दिया है और जिंक सॉलिड का फॉर्मेशन करवा दिया है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो आपको याद ही होगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है, किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन करवाने का मतलब है उसमें ऑक्सीजन का एडिशन करवाना, ऑक्सीजन उसको देना, गेन कराना ऑक्सीजन, और किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन रिमूव कराने से हम कहते हैं कि हमने उस कंपाउंड को रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ है जिंक ऑक्साइड का इनटू जिंक सॉलिड, और रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन सॉलिड। कार्बन को कोक भी कहते हैं, एंड कार्बन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये मेटल के ऑक्साइड में से उसको रिड्यूस करवाने में बहुत हेल्पफुल होता है। बहुत सारे मेटल के ऑक्साइड्स को बहुत इजीली कार्बन जो है वो रिड्यूस करा देता है, और प्योर मेटल हम लोगों को मिल जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि कई बार तो हम कार्बन का इस्तेमाल कर देते हैं मेटल ऑक्साइड से मेटल की प्राप्ति करने के लिए, रिड्यूस कराने के लिए, लेकिन कई बार हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी करवा लेते हैं। वैसे देखा जाए तो ये जो रिएक्शन है पेज नंबर 51 पर जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ, इसमें आपको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट्स ध्यान से देखो, जिंक सॉलिड मिल रहा है और कॉपर ऑक्साइड मिल जा रहा है। तो बेसिकली अगर थोड़ा बहुत देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ही है, क्योंकि जिंक का ऑक्साइड पहले था, अब जिंक की ऑक्साइड में से जिंक को निकाल करके कार्बन उसकी जगह घुस गया है और जिंक को अलग कर दिया है। लेकिन थोड़ा सा अंतर यह है कि जिंक ऑक्साइड जब था तो वो सॉलिड फॉर्म में था, लेकिन कार्बन ऑक्साइड जब बना है तो वो गैशियस बना है। तो कम्प्लीटली हम नहीं कह सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया है। लेकिन बात यह हो रही है कि कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि कोई मेटल का ऑक्साइड हमें मिला है तो हम मेटल के ऑक्साइड में कुछ ऐसे सब्सटेंस मिक्स करते हैं जो डिस्प्लेसमेंट कराएं। जिंक ऑक्साइड में मान लो कोई और दूसरा मेटल हो, तो उसके मेटल ऑक्साइड में से दूसरा मेटल मेटल जो आपने डाला होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, कम रिएक्टिव वाले मेटल के सोल्यूशन में से कम रिएक्टिव वाले मेटल को निकालेगा, उसकी जगह खुद घुस जाएगा और इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स कहाँ होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर वाले जो मेटल्स होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव। तो हम क्या करते हैं कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, इनका इस्तेमाल करते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। क्योंकि ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं ये लो रिएक्टिविटी वाले मेटल के कंपाउंड में से मेटल्स को निकाल देते हैं, उसकी जगह खुद घुस जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट करा देते हैं। एग्जाम्पल से समझाया गया है आप लोगों को कि अगर आप लोगों के पास मैंगनीज डाइऑक्साइड हो, आप लोगों ने कैल्सिनेशन रोस्टिंग करवा करके मैंगनीज डाइऑक्साइड की प्राप्ति कर ली। अब आप क्या कर रहे हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड से आपको मैंगनीज चाहिए। अब आपने क्या किया, एल्युमिनियम के साथ मैंगनीज डाइऑक्साइड की हीटिंग कराई, मैंगनीज जो है उसकी जो डाइऑक्साइड है उसको आपने हीट कराया और एल्युमिनियम के साथ में कराया। अब मैंगनीज जो है वो तो मीडियम रिएक्टिविटी वाला है और एल्युमिनियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है। तो क्या होता है कि मैंगनीज का जो डाइऑक्साइड है उसमें से मैंगनीज को रिमूव करके जो हमारा एल्युमिनियम है वो खुद उसकी जगह घुस जाता है और मैंगनीज को बाहर निकाल देता है। तो ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है प्लस ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी है, क्योंकि मैंगनीज ऑक्साइड को मैंगनीज लिक्विड में कन्वर्ट करवाया गया है। तो यहाँ पर मैंगनीज तो रिड्यूस हो गया ना, मैंगनीज जो डाइऑक्साइड है वो तो रिड्यूस हो गया, कन्वर्ट हो गया इनटू मैंगनीज। तो यहाँ पर मैंगनीज डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो गया है और एल्युमिनियम तो पहले सॉलिड फॉर्म में था लेकिन अब Al2O3 बन गया है, मतलब एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन गया है। तो एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो गया है इनटू एल्युमिनियम ऑक्साइड। साथ में ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है क्योंकि एल्युमिनियम ने मैंगनीज डाइऑक्साइड में से मैंगनीज को निकाल करके खुद उसकी जगह घुस गया है, तो इसीलिए हम इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह भी समझ सकते हैं या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की तरह भी समझ सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन है पेज नंबर 52 पर सबसे ऊपर, MnO2 3MnO2 सॉलिड प्लस 4Al सॉलिड, इन्हें हीट किया गया है तो मिला है 3Mn लिक्विड प्लस 2Al2O3 सॉलिड प्लस हीट। प्लस हीट का मीनिंग मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार और बता देती हूँ। प्लस हीट लिखने का मतलब ये है कि इस रिएक्शन के होने के साथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और हीट रिलीज हुई है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हुई है और इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। हीट रिलीज हो रही है तो इस चीज़ का इस्तेमाल, इस बात का इस्तेमाल किया जाता है कि ये जो प्रोसेसेस होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन जहाँ पर हो रहा है यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है, तो इस बात का इस्तेमाल किया जाता है रेलवे ट्रैक्स को बनाने के लिए। आप लोगों को पता है कि कई बारी रेलवे ट्रैक्स जो होती हैं वो कहीं कहीं से बीच बीच से टूट जाती हैं, तो उनको जोड़ना पड़ता है और उनको जोड़ने के लिए यहाँ पर ये जो रिएक्शन है जिसमें हाईली एक्सोथर्मिक ये है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाते हैं। हमारे पास जो रेलवे ट्रैक्स होती हैं जब वो ऐसे ही एनवायरमेंट में रखी होती हैं और उस पर ट्रेन्स चलती हैं, तो जब भी हमारे पास आयरन होगा और वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, चाहे पानी के संपर्क में आएगा, मॉइस्चर के संपर्क में आएगा, तो वो क्या करता है, वो आयरन का ऑक्साइड बना लेता है। तो Fe2O3 का फॉर्मेशन हो चुका है। अब Fe2O3 के साथ जब हम लोग एल्युमिनियम का रिएक्शन कराते हैं, अब पहले तो हम रिएक्शन ही क्यों करा रहे हैं, रिएक्शन यहाँ पर बेसिकली इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो आयरन है वो टूटा हुआ है, रेलवे ट्रैक्स जो है वो टूट गई हैं, हमें उसे जोड़ना है, तो हम यहाँ पर एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं टूटी हुई रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए। और इसमें हम क्या करते हैं, आयरन का ऑक्साइड लेते हैं और उसका रिएक्शन कराते हैं एल्युमिनियम के साथ, हल्का सा हीट करते हैं और वहाँ पर रिएक्शन शुरू हो जाती है। और क्या होता है, जो आयरन का ऑक्साइड है वो रिएक्ट करता है एल्युमिनियम के साथ और फॉर्मेशन होता है आयरन लिक्विड। लिक्विड फॉर्म में हमें आयरन मिलता है और Al2O3 हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पर देखो, ये Al2O3 तो सॉलिड फॉर्म में मिला, आयरन लिक्विड फॉर्म में मिला और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई है। तो यहाँ पर हमें आयरन लिक्विड फॉर्म में मिलने का क्या कारण है, क्यों मिला है। पिछले वाले रिएक्शन में भी आपने देखा कि मैंगनीज जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मेटल तो है, लेकिन बावजूद उसके वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिला है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि ये जो रिएक्शन है इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, जिसकी वजह से हमें जो मेटल मिलता है वो पिघल के हमें मिलता है। और इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, जो पिघला हुआ मेटल हमें मिला है वो हम लोग रेलवे ट्रैक जो टूट गई है उसको जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, रेलवे ट्रैक वहां पर जोड़ लेते हैं। इस प्रोसेस का नाम है थर्मिट रिएक्शन और थर्मिट प्रोसेस। थर्मिट प्रोसेस में हम बेसिकली क्या करते हैं, Fe2O3 लेते हैं, यानी कि आयरन का ऑक्साइड लेते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं एल्यूमिनियम के साथ, थोड़ा हीट करते हैं, और जैसे ही रिएक्शन शुरू हो जाती है तो वहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और आयरन जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। लिक्विड फॉर्म में क्यों मिलता है, क्योंकि इस रिएक्शन के होते वक्त लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, जिससे लोहा पिघल जाता है और वो पिघल करके जो टूटा हुआ रेलवे ट्रैक है वो आपस में जुड़ जाते हैं। क्योंकि लोहा पिघल गया है, अब वो जहां से टूटा है वो दूसरे वाले लोहे से आराम से पिघलने के कारण चिपक जाता है। और ये तरीका अपनाते हैं हम रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए, और इसका नाम है थर्मिट प्रोसेस या थर्मिट रिएक्शन, एंड इट इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग रेलवे ट्रैक्स। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो थर्मिट प्रोसेस या फिर थर्मिट रिएक्शन है ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी है, प्लस ये एक ऐसा प्रोसेस भी है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसमें डिस्प्लेसमेंट किसकी हुई है, डिस्प्लेसमेंट हुई है आयरन की फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, और डिस्प्लेसमेंट किसने कराया है, एल्युमिनियम ने कराया है, क्योंकि एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू आयरन। और अगर इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात की जाए तो हमारे पास पहले आयरन का ऑक्साइड था, लेकिन अब हमें आयरन लिक्विड फॉर्म में मिला है। इसका मतलब है कि आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया है इनटू इट्स सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म। तो आप कहेंगे कि Fe2O3 इज रिड्यूस्ड इनटू Fe एंड एल्युमिनियम, जो एल्युमिनियम सॉलिड है इट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू Al2O3 सॉलिड। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रिएक्शन भी है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, साथ में हीट रिलीज हो रही है इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो कितनी सारी चीजें रिवाइज हो गई एक ही रिएक्शन के साथ में, आपके पिछले चैप्टर के कितने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिवाइज हो गए। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने बात कर ली कि जो मिडल रेंज के रिएक्टिविटी वाले मेटल होते हैं उनको कैसे प्राप्त करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन मेटल्स के बारे में जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जो सबसे ऊपर होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, सच एज सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दे आर हाईली रिएक्टिव। तो हम इनको कैसे प्राप्त करते हैं, इनको प्राप्त करने का क्या तरीका होता है। देखो, जो ये मेटल्स होते हैं हु आर हाईली रिएक्टिव, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन। अगर हम जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उसके ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट करें और ये सोचें कि हमें कार्बन का ऑक्साइड गैस में मिल जाएगा और प्योर मेटल मिल जाएगा जो हाईली रिएक्टिव है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है अगर उसके ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट करोगे तो आपको प्योर मेटल नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो मेटल है वो ऑक्सीजन से ज्यादा प्यार करता है एज कम्पेयर टू कार्बन, इसलिए कार्बन का ऑक्साइड वो बनने नहीं देगा, वो ऑक्सीजन को छोड़ेगा ही नहीं और वो प्योर मेटल हम लोग को मिलने नहीं देगा। तो ये तरीका तो हम लोग नहीं अपना सकते, यहाँ पर हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराना पड़ता है। इलेक्ट्रोलिसिस का मीनिंग तो आप लोगों को पता है, इलेक्ट्रोलिसिस का मीनिंग है बिजली की मौजूदगी में, बिजली की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया जा रहा है। और वो भी रिएक्शन कैसा है, जो कंपाउंड हमने लिया है उसका ब्रेकडाउन करवा रहे हैं। लिसिस का मीनिंग होता है ब्रेकडाउन, तो बिजली का इस्तेमाल करके ब्रेकडाउन करवा रहे हैं प्लस रिडक्शन भी करवा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके कंपाउंड्स में से प्योर मेटल प्राप्त करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराते हैं। अगर हमारे पास मेटल्स हैं सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, और इनके क्लोराइड्स हमारे पास हैं, मतलब अगर सोडियम क्लोराइड है या मैग्नीशियम क्लोराइड है या कैल्शियम क्लोराइड है, तो हम क्या करेंगे, हम इन सभी का क्लोराइड लेंगे और इनको पहले पिघलाएंगे, और इनको पिघलाने के बाद इनकी इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, बिजली पास कराएंगे इनसे और इनका ब्रेकडाउन कराएंगे, कैथोड पर और एनोड पर ये लोग रिलीज होंगे और हम लोगों को प्योर मेटल मिल जाएगा। किस तरीके से मिलेगा, हम लोगों को जो प्योर मेटल होगा वो मिलेगा कैथोड के ऊपर, एंड हियर द कैथोड इज यूज एज अ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड और एनोड के ऊपर हम लोग को Cl2 गैस क्लोरीन गैस मिल जाएगी। रिएक्शंस आप लोगों को दिखाई गई है पेज नंबर 52 पर, आप लोग देख सकते हैं कैथोड के ऊपर की रिएक्शन दिखाई गई है। जो सोडियम आयन्स होंगे जो मोल्टन स्टेट, सबसे पहले तो ये समझो आप लोगों ने मोल्टन स्टेट लिया, NaCl का मोल्टन स्टेट लेने का क्या मतलब है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, मोल्टन स्टेट में और एक्वा स्टेट में, पानी में घुला हुआ हो चाहे पिघला हुआ हो, दोनों ही केसेस में हमारा जो कंपाउंड है वो टूट चुका है इनटू इट्स आयन्स, कटायन और अनायन बना चुका है। तो पहले से हमारे पास Na+ आयन्स हैं, कटायन्स हैं, और Cl- अनायन्स हैं। तो क्या होता है, कैथोड के ऊपर जो Na+ है उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है और वो कैथोड पे सोडियम प्योर फॉर्म में दे देता है हम लोग को। और एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, एनोड पे जो 2Cl- होता है, क्लोराइड के जो नेगेटिव आयन्स हैं, अनायन्स जो हैं, वो अपने दो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और वो Cl2 का फॉर्मेशन कर देता है और क्लोरीन गैस हम लोगों को मिल जाती है। इसी तरीके से आप लोग एल्यूमिनियम क्लोराइड का भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करा सकते हो, या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी आप लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करा सकते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस तो आपको समझ में आया क्योंकि हमने ब्रेकडाउन करवाया है सोडियम क्लोराइड का इंटू सोडियम प्लस एंड Cl-। रिडक्शन कैसे हुआ, रिडक्शन इसलिए हुआ क्योंकि सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है तो वहां पर सोडियम प्योर फॉर्म में मिला है। अब आप लोगों ने तो छोटी क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीजन ऐड कर दें तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीजन रिमूव कर दें तो रिडक्शन हो जाता है। हायर क्लासेस में इलेक्ट्रॉन के आधार पर पढ़ोगे कि अगर किसी स्पीशी को, कटायन को हम इलेक्ट्रॉन दे देना तो उसका रिडक्शन हो जाता है। यानी कि जैसे ऑक्सीजन रिमूव करने से रिडक्शन होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड करने से भी रिडक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर सोडियम आयन जो कटायन है इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है, इसने इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिया है जिसकी वजह से इसने सोडियम बनाया है, तो यहाँ पर इसीलिए जो Na+ है उसका रिडक्शन हुआ है। क्योंकि रिडक्शन की एक और डेफिनेशन होती है जिसकी डेफिनेशन में आपको ये समझना होता है कि किसी कंपाउंड ने अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति की है तो वो रिड्यूस हुआ है, अगर उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, उसने इलेक्ट्रॉन का दान किया है तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। इसे भी नोट कर लो और याद रखना कि इस बार आप इलेक्ट्रॉन के अगर आधार पर बोलें तो आप क्या बोलेंगे कि ऐसी स्पीशी, केमिकल स्पीशी जिसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ हो तो हम कहेंगे कि उस केमिकल स्पीशी का रिडक्शन हुआ है, और ऐसी केमिकल स्पीशी जिसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ हो तो हम ये कहेंगे कि उस स्पीशी का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, और इसी के साथ में हम लोगों ने सभी प्रकार के मेटल्स, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, मिडिल रेंज के रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को कैसे प्राप्त करते हैं प्योर फॉर्म में, ये हमने पढ़ लिया, समझ लिया। आपने क्या करना है, आपने आज जो पढ़ा है उसका रिविजन कर लेना है, कहीं पर भी आपको दिक्कत आए तो आपको अपने टीचर से ज़रूर पूछना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।